नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। पिछले कुछ दिनों से हम प्रहलाद महाराज की जो दिव्य शिक्षाएं हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले नरसिंह चतुर्दशी के लिए अपनी चेतना को योग्य बना के रखने के लिए, ताकि इस दिन की जो खास कृपा है उसको पूर्ण रूप से ग्रहण कर सके। तो हमने चर्चा किया पिछले कुछ प्रवचन के दौरान कि किस प्रकार जब हिरण्यकशिपु अलग अलग तरीके से प्रहलाद महाराज को 5 साल के छोटे से बालक थे, जितने भी चाहे प्रयास हिरण्यकशिपु ने किया वो विफल रहे और तो चिंतित हो गए और भयभीत भी हो गया हिरण्यकशिपु। पर शंडा अमरका ने आश्वासन दिलाया कि नहीं नहीं, अभी बचपन है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका स्वभाव बदल जाता है, ये भी बदल जाएगा, ठीक हो। अरे अरे कुछ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कहने पर हिरण्यकशिपु ने कहा कि ठीक है, और इस तरह से शंडामरका ने फिर से प्रहलाद महाराज को अपने गुरुकुल ले गए और वहां अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश की। पर प्रहलाद महाराज महाभागवत थे और पूर्ण रूप से परम सत्य का साक्षात्कार हुआ था उन्हें, विश्वास श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृता है। श्रद्धा का शब्द है पूर्ण विश्वास कि अगर हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से और सब कर्म अपने आप हो जाता है। सारे धर्मों की परिपूर्णता है कि भगवान को प्रसन्न करना। तो ये विश्वास होने के कारण भले शंडा अमरका ने कई अलग अलग तरीके से साम दान दंड भेद किस प्रकार से इस भौतिक संसार में राज्य करना है और भोग करना है ये सिखाते थे, पर न साधु मेने उससे वो प्रभावित नहीं हुए प्रहलाद महाराज और उनको कुछ असर नहीं पड़ा, बल्कि वो उस मौका का राह देखते थे जब शंडा और अमरका दोपहर को खाने के लिए जब जाते थे तो सारे बच्चे जैसे जब शिक्षक चले जाते तो खेलने की इच्छा होती बच्चों की, खेलना शुरू कर देते, तो उस समय खेलने लगते थे और उस समय प्रहलाद महाराज इन सारे बच्चों को बुलाते थे और उनको सार में जो नारद मुनि के मुखारविंद से अपने मां के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने सुना था वो उनको सुनाने लगे। तो आज संक्षिप्त रूप में ये जो छठा अध्याय है, छठा अध्याय संपूर्ण छठा अध्याय जो है प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं अपने जो क्लास के क्लासमेट्स अपने क्लास के सारे बच्चों को, मतलब सेम वो भी 5 साल के ही थे पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम देखेंगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, इसमें चार भागों में बांटा जा सकता है। एटलीस्ट मैंने जो पढ़ा इसको चार भागों में बांटा जा सकता है प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं को, ये खास करके छठे अध्याय में। एक तो है कि मनुष्य जीवन की जो खासियत है, क्यों मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है और उसका उद्देश्य क्या है, ये बहुत ही सुंदर से वर्णन किया है पहले पांच श्लोकों में। फिर आने वाले कुछ तीन श्लोकों में उन्होंने बताया कि जिसको जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है वो नहीं मालूम, उसकी जीवन कैसे जाती है। और फिर उसके बाद के श्लोकों में ये बताया कि क्यों कभी कभी ये सब जानने के बावजूद भी जो नहीं जानता है, और कभी कभी थोड़ी बहुत जानने के बावजूद भी पूर्ण रूप से जीवन की लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कितनी सारी बाधाएं क्यों आती है और किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, उसका वर्णन किया उन्होंने। और बाद में कहा है कि किस प्रकार से एक्चुअली भगवान की शरण जाना उसके लिए जो अनुकूल है, उन चीजों का वर्णन किया। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। कौमार आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञो मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, कुमार अवस्था से मतलब 5 साल की उम्र से, उससे भी जल्दी हो सके तो और भी अच्छा। कौमार आचरित प्राज्ञ क्या, धर्मान भागवतान, भागवत धर्म सनातन धर्म जो है उसका पालन कुमार अवस्था से शुरू हो जानी चाहिए। क्यों क्यों जल्द से जल्द शुरू क्यों करना चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। और तदपि अध्रुवम, ध्रुव मतलब शाश्वत, अशाश्वत है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी किसकी। तो एक तो दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिली है, और मिलने के बाद भी कितने समय मिलेगी पता नहीं। ये दो चीज हमको जानना है, ये जो मनुष्य योनि हमको प्राप्त हुई है, ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये स्पेशल चीज है। नहीं तो 84 लाख योनियों में सारी आत्मा बराबर है, एक कृमि कीटाणु के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा हमारे अंदर भी है, हम भी वही है। एक कुत्ते के अंदर जो आत्मा है, एक देवता के अंदर जो आत्मा है, ब्रह्मा जी के अंदर जो आत्मा है, वही हम भी हैं। यानी हमारा और उनमें आत्मा के स्तर पर कोई अंतर नहीं है, पर खास एक शरीर जो मिला है, आत्मा का जो कवरिंग मिला है, ये कवरिंग खास कवरिंग है, दूसरों को ऐसा नहीं मिला है। एक पेड़ को एक शरीर मिला है, पेड़ के अंदर जो आत्मा है उसको एक शरीर मिला है, पेड़ का शरीर। किसी को कृमि कीटाणु का शरीर मिला है, किसी को कुत्ते बिल्ली का शरीर मिला है, किसी को बंदर का शरीर मिला है, और किसी को मनुष्य योनि मिल गया बाय चांस। तो दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, कितना कितना। जैसे परसों थोड़े दिन पहले सामान प्रभु कह रहे थे तुकाराम महाराज के, एक एक योनि मदे कोटि कोटि फेरा, 84 लाख योनि ऐसा नहीं, एक एक योनि में भी कोटि कोटि फेरा हो सकता है। एक एक पेड़ का योनि मिल गया तो हम तो, हमारा तो 100 साल बस, तो उनका तो 500-600 हजार साल तक चलता है किस प्रकार का पेड़। तो ये सब करते 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 मनुष्य योनि मिला है। तो दुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है, और अध्रुवम, मिला तो सही, एक बार मिल गया चलो और कोई चिंता नहीं, गारंटी नहीं है कब निकल जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता कि मैं पूरा 100 साल जीऊंगा, क्या गारंटी है कलयुग में, खास करके कलयुग में। तो ये तो बोल रहे थे सतयुग में, उस समय बोल रहे ध्रुवम, जब लोग लाख साल जीते थे। पर हमारा तो अगर बहुत सौभाग्यशाली है तो 100 साल जिएंगे, वो भी नहीं, अध्रुवम। पर अर्थदम, अर्थदम, अर्थ मतलब मूल्यवान, अर्थदम एक मूल्यवान चीज प्रदान कर सकता है ये जो वाहन हमको मिला है। किसी को साइकिल मिला है, किसी को रिक्शा मिला है, किसी को मर्सिडीज बेंज मिला है, और किसी को हवाई जहाज मिला है। ये हवाई जहाज जैसा है हमारा, सीधा लैंडिंग, डायरेक्ट, इधर उधर ऊपर नीचे सब ऐसा जाने की जरूरत नहीं, सीधा शॉर्टकट। तो ये जो खास शरीर है, ये सबको शरीर मिला है, पर देही नाम, ये शरीर जो मिला है मनुष्योनि में, ये खासियत ये है इस वाहन का। ये एक्चुअली वाहन है, यंत्रारूढ़ानी माया भ्रामयम सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी। हर एक को अपना अपना एक यंत्र मिला है, किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास गाड़ी है। इसी तरह से इस आत्मा को, इस योनि में खास करके एक यंत्र मिला, एक यंत्र है ये, और इस यंत्र का एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य इस यंत्र का। सारे यंत्रों में कुछ चीजें बराबर है, आहार निद्रा अभय मैथुनम च, जिसको भी शरीर मिला है उसको खाना ही है, उसको सोना ही है, उसको संरक्षण करना ही है अपने आप को, और प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करना है। ये तो हर एक योनि में होता है, पेड़ योनि में भी होता है, कृमि कीटाणुओं की योनि में होता है। शरीर मिला है तो खाना ही है, बिना खाए मर जाएंगे हम। सोना ही है, बिना सोए बिना हम शक्ति फिर से रिज्यूनेट नहीं हो, मतलब शक्ति नहीं मिलेगी फिर से। आराम करना है, आराम करने के बाद फिर से फ्रेश हो जाता है आदमी। कंटिन्यूसली काम करेगा तो थक जाता है, 4 दिन मत सोइए, क्या हालत हो जाएगा देखिए, भूत जैसा सा घूमते रहेंगे बस, कहां सोया क्या कर रहा कुछ समझ में नहीं आता है। तो खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, और अपने आप का संरक्षण करना जरूरी है, और इस पीढ़ी को बढ़ाना। ये तो हर योनि में है, जिसको शरीर मिला ये 4 चीज जरूरी है। पर अर्थदम मनुष्य योनि का एक खासियत है, और वो खासियत क्या है, आत्म साक्षात्कार। अगर वो नहीं किया तो फिर हमको जो खास एक उपहार मिला है उसको हमने फेंक दिया, उसका उपयोग नहीं किया। आपके पास फर्स्ट क्लास एक लैपटॉप कंप्यूटर किसी ने दिया है, कितना GB, 1000 GB समझ लो, और उसको मालूम ही नहीं है कि क्या डब्बा है क्या, ये खोलता है बोलता है टीवी है कि क्या है, कांच है कि क्या है, इतने सारे बटन है क्या है, तो कितना मतलब, अरे 72,000 का है ये, तो क्या हुआ, पर मेरे को कहां रखेगा, ही रख देगा बस, उसको मालूम नहीं होगा। तो इसके अंदर, इस शरीर जो है इसमें एक खासियत है, विवेक बुद्धि दिया है भगवान ने। धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। तो अर्थदम, अर्थदम मतलब पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो, इसमें धर्म क्या है जान सकते हैं, दूसरों को नहीं मालूम, वो काम वासना में रखे हुए हैं और कैसा अपना संरक्षण करना चाहिए। अर्थम, अर्थ, अर्थ मतलब संरक्षण करना, और काम मतलब भोग करना। तो ये तो चलता ही है, उनमें भी चलता है, हमें चलता, पर धर्मों ही देशाम अधिको विशेष। हाँ, कुछ संग्रह करना जरूरी है और भोग करना जरूरी है, क्योंकि शरीर के लिए चाहिए, पर धर्मो ही देशाम अधिको, आहार निद्रा भय, पर युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म से चेष्टसा, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखः। पर दुख से अगर निकलना है तो धर्म के अलावा, खाना तो है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, सोना तो है, कब सोना है, कितना सोना है, कितना नहीं सोना है, बच्चे पैदा करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कैसा करना है, उनका देखभाल कैसे करना है, अपने आप का संरक्षण करना है, पर किसी को मार के नहीं, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, यह सब मनुष्य योनि में समझ में आता है। धर्म अर्थ काम, तो अर्थ और काम को तृप्त करना है तो धार्मिक तरीके से, और जब धार्मिक तरीके से करते हैं तो समझ में आ जाता है, बुद्धिमान आदमी समझ जाता है कि आप ब्रह्म भुवनालोक का कहीं भी जाओ तो तकलीफ आने वाला है, तो अभी मुझे मोक्ष चाहिए। पर प्रेमापमार्थो महान अर्थदम, सबसे बड़ा अर्थ क्या है, प्रेमापमार्थो पंचम पुरुषार्थ, वो है भगवत प्रेम। क्यों भगवत प्रेम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति, कि हमेशा के लिए ये जो सारा संकट है भौतिक संसार का संकट, उसमें से दूर होकर पूर्ण रूप से भगवत धाम में चले जाए। अर्थदम पंचम पुरुषार्थ, अगर वो प्राप्त नहीं किया तो फिर ऐसे चला जाएगा, हम भी आए और गए बस, कितने सारे कृमि कीटाणु अभी हम देखते हैं हर रोज यहां से, वो आदमी लोग वो मुर्गी को उल्टा टांग के हैंडल में ले जाते, कौन पूछता है कितने लोग मरे, न्यूज़पेपर में आता है क्या, 20 मुर्गी ले गए, 20 क्या हजारों, यहां से हर रोज हर बार 10-10 मिनट में देखता रहता हूं मैं इधर से, और वो भी शीर्षासन उल्टा लटका के, तो कभी न्यूज़पेपर में आता नहीं कितने मारे गए, ऐसे हजारों आए हजारों गए, कौन पूछता है, ऐसा जीवन हमारा नहीं चले जाना नहीं चाहिए। काल के रूप में हम भी, हमको भी लटका के ले जाएंगे, हम देख नहीं पाते, यहां तो देख रहे हैं पर वो समझ नहीं पाते, पर हम समझ सकते हैं कम से कम। तो वो आने से पहले एक ऐसा कार्य करो कि फिर से वो चक्कर से फिर से नहीं पड़े हम। तदपि अध्रुवम अर्थदम, 5 साल का प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, तो फिर कोई कह सकता है तो क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा अर्थ अर्थदम क्या है वो, यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सहृद, यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है, अतएव प्रत्येक जीव को विशेषतया उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों में भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए, यह भक्ति स्वाभाविक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनो, ये नित्य सिद्ध ऑलरेडी है हमारे हृदय में, इसके लिए कोई चेष्टा कर इसके लिए कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, अलग से स्वाभाविक है ये। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो ये उदय, अगर सुन, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वोधिक प्रिय परमात्मा तथा सब जीवों के शुभ चिंतक हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, वो हमारे सुहृद हैं। भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है जानना, उसको पुनर्स्थापित करना, और प्रेम भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु को है, वेदों में तीन चीज बताया गया, भगवान और हमारे में संबंध क्या है, उस संबंध को पुनर्स्थापित कैसा करना चाहिए, और स्थापित किए तो क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, प्रेम और भगवत धाम वापस जाने को मिलेगा। यह स्वाभाविक है, ये कोई जबरदस्ती कहीं स्कूल या यूनिवर्सिटी जाके सीखने की बात नहीं है, भगवान से प्रेम करना, जैसे प्रहलाद महाराज ने पिछले श्लोकों में कहा, जिस प्रकार एक लोहे के छोटे से टुकड़े को चुंबक की ओर आकर्षित होना कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक रूप से चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, इसी तरह से जीव को भगवान के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है, नहीं हुए तो गड़बड़ी है वो, इसका मतलब कुछ कृत्रिम आवरण आ गया है, आवरण हो गया है, वो आवरण को हटाना चाहिए बस, और यही एकमात्र प्रयास करना चाहिए, और दूसरा तो कोई कहेगा कि ठीक है पर दूसरा जो प्रयास है भाई, शरीर परिवार को देखभाल करना, शरीर को देखभाल करना, ये सब भी करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सिर्फ उतना ही करना है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, तो उसके उत्तर में प्रहलाद महाराज कहते हैं, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यवह परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणामृतम। केवल इंद्र तृतीय भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमको लगता है कि और थोड़ा ज्यादा कमा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा, उसके बाद तो भक्ति करना ही है, स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है। पहले प्रयास कर लो, सब एकदम सेटल हो जाने दो, एक बार हो गया सब फाइनल करके बाद में बस आराम से बैठ के प्रभु आप और मैं बस। लोगों को लगता है ऐसा कि नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं, पहले सब सेटल कर लेते ना, तो सेटल होगा ही नहीं क्योंकि यहां का होल योजना भगवान ने इस संसार को ऐसे रचना किया, दुखालयम अशाश्वतम, और सेटलमेंट करना क्या, सुखालयम शाश्वतम। भगवान की योजना के विरुद्ध नहीं जा सकते हम, पूरा बुलडोजर लगा दिया जाएगा। सरकार के विरुद्ध आपने योजना, किसी का वैसा सरकार का लैंड है उसमें आपने बड़ा महल बना दिया, बस ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इस तरह से भगवान का नियम है, भगवान की इच्छा जो है वो होने वाली है, उसके विरुद्ध जाने की कोशिश करोगे ये दुखालय में शाश्वतम है, उसको नहीं सुखालय में शाश्वतम बना देंगे, अब बाद में हम लोग आराम से भक्ति करें, नहीं होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ नहीं होता। अगर कोई समझता है कि आर्थिक लाभ से सब हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी बिजनेस वो थोड़ा भक्ति कर लेंगे, ऐसा आज तक नहीं हुआ है, न होगा, न कहीं हुआ है। ततो यतेत कुशलम क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन विपद्येत पुष्कलम। अतएव इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे के भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक हर जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। जब तक शरीर दष्ट पुष्ट है, योग्य है, योग्य अवस्था में है, इस चीज के लिए लगाओ, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम आयु 100 वर्ष है। अभी कहते हैं ये आयु कैसा जाता है, हमारी आयु जो अगर जिसको लक्ष्य नहीं मालूम उसका आयु जनरली कैसे जाता है, आप देखेंगे दुनिया में, हम देखते हैं या हमारा आयु खुद अगर कृष्ण भावना में आने से पहले हम अगर ध्यान से देखते, सोचिए आप फ्लैशबैक 10 साल 20 साल जो भी है, जितने साल पहले आप कृष्ण भावना में आए उससे पहले आप देखिए, या दूसरे पूरे दुनिया में आप देखिए, जनरली लोगों की आयु कैसे जाती है उसका एक क्या बोलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके प्रहलाद महाराज हरेक का जीवन का फास्ट फॉरवर्ड करके, ऐसा एक घंटे का अगर फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया ना तो 5 मिनट में ही खत्म हो जाता है। तो इस तरह से एक फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं कैसा जाता है एक व्यक्ति का जीवन। पुंसो वर्ष शतम ही आयु तदर्थम चाजितात्मन अजितात्मन निष्फलम यदसौ रात्र्याम शेतेधम प्रापितस्तम। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष मतलब ब्रह्मा जी का भी 100 वर्ष, एक चींटी का भी 100 वर्ष, हमारा भी 100 वर्ष। इट्स ए रिलेटिव वर्ल्ड, भले उनका 100 वर्ष और हमारा 100 वर्ष अलग है, चींटी भी 100 वर्ष है पर हमारे लिए वो तो एक दिन होगा बस, हमारा 100 वर्ष, हम भी 100 वर्ष रहते पर देवताओं के लिए वो बस एक महीना भी नहीं होगा, और देवता लोग 100 वर्ष रहते हैं पर ब्रह्मा जी के लिए वो एक सांस लिए तो सब देवता मर जाते 100 वर्ष, और ब्रह्मा जी 100 साल रहते हैं वो महाविष्णु का एक सांस है बस, यस्यैक निःश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथ। विष्णु महान। तो हरेक का 100 साल, बट हरेक को 100 साल मिला। भगवान सबके प्रति समान है, सबको 100 साल दिए। तो किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, अजितेंद्रिय अज्ञानवश, उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे सोने में ही बीत जाते हैं। अतएव ऐसा व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष की होती है। तो 100 में 50 तो ऑलरेडी गया क्या सोने में। निद्रया ह्रियते नक्तम विवाहेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणी नवा। सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी भी एक क्रैश कोर्स देते हैं कैसा आयु जाता है एक व्यक्ति का जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जो जीवन का लक्ष्य नहीं जानता है। मुझे एक बार याद है, सचिनंदन महाराज हमारे यहां आए थे राधा गोपीनाथ मंदिर में, और उन्होंने एक ऐसा तरीके से यह बताया हमारी आयु कैसे जाती है कि जिंदगी भर मैं कभी नहीं भूलूंगा। कभी कभी हम लोग ऐसा चर्चा करते भूल जाते, पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबको सब बैठे हुए थे तो बोले, इसमें सबसे बूढ़ा व्यक्ति कौन है? तो एक व्यक्ति 85 साल का था, 85 ईयर्स बूढ़ा। तो बोला, इससे भी कोई बूढ़ा है क्या? कोई नहीं। बोले, इधर आओ। उनको एक व्यासासन की एक ओर खड़ा कर दिया। फिर बोले, सबसे छोटा कौन है इधर? 4 साल का एक बच्चा था, उसको बोले इधर आ। उसको एक खड़ा कर दिया, दोनों को खड़ा कर दिए, और कम से कम 18 फुट लंबा उनके पास एक रस्सी था, रस्सी लाए और एक रस्सी का एक छोर जो है वो बूढ़े के हाथ में दे दिए और एक बच्चे के हाथ में दे दिए, और बोले, मित्रों ये हमारी आयु है, ये मृत्यु के बहुत करीब हैं, तो ये मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते हैं। बूढ़े को दिखा के बोले कि ये मृत्यु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि ये मृत्यु की बहुत पास आ गए हैं ऑलरेडी, और ये बच्चा जो है अभी जन्म के पास पास ही है, इसीलिए जन्म का प्रतिनिधित्व करता है, और ये जो रस्सी है ये हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हमारी आयु है। और फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आप लोग कितने देर सोते हो? किसी ने कहा 6, किसी ने कहा 8। 8 घंटा, 8 घंटा मतलब 24 घंटा दिन में होता है, उसमें 8 घंटा सोए मतलब 1/3, 3 हिस्सा, 3 भाग में करो तो एक। तो 18 जो फीट लंबा था, एक कैंची लाए और बोले काट दिया, 12 फुट का हो गया। तो बच्चा पास आ गया, यहां आके पकड़ा, बोले ये बच्चे इसको फेंक दो, अभी वो गया, हो वेस्ट हो गया, सो गए ना। वो 6 फुट का रस्सी फेंक दिया, फिर पास आ गया, अभी 12 फुट पास पास में। फिर बोले ओके, फिर खाने पीने में कितना जाता है? ओके 2 घंटा, थोड़ा काट दिया। फिर नहाने धोने में सजाने में कितना जाता है? वो काट दिया। फिर ऑफिस में कितना जाता है? ये काटते 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 बाद में बूढ़े और बच्चा दोनों साथ साथ में एक दूसरे नाक लगा के खड़े, 2 इंच बचा है बस। बोले देखो इतना ही बाकी बचा है, अगर तुम 100 साल जिए तो। ऐसा हो गया है तो अब कुछ लोगों को थोड़ा गंभीर लगा, अरे बाप रे, हां सही बात है। तो कभी कभी हम लोग सुनते हैं, मालूम है प्रहलाद महाराज का श्लोक मालूम है मेरे को, फर्स्ट क्लास तोते जैसा रटते हैं, पर क्या सचमुच में हमको इसकी गंभीरता मालूम है? कितना समय हमारा चला जाता है। एक महान भक्त, भक्ति में प्रगति हुआ है, इसके 8 लक्षण बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, और उसमें से एक है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम, अगर एक क्षण भी कृष्ण के विस्मरण में चला गया तो व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है। 6 निद्रावासे गेलो रे राती दिवस शरीर साजे, क्या वो इसका शुरुआत क्या है? जीव जागो, सोने में हमारा पूरा रात चला गया और शरीर की देखभाल करने में और सजा सजा के रखने में पूरा दिन भर चला गया, फिर बाकी बचा क्या? तो इस तरह से बहुत कम हो जाता है आयु। ये हरिभक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज नारद मुनि एक सुंदर कथा बताते हैं, एक एक्चुअल घटना बताते हैं कि एक बार बड़े संतों का सम्मेलन हो गया, सब संत लोग बैठे हुए थे, वशिष्ठ बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषिगण, और उनमें चर्चा हुई किसका जीवन सही सार्थक है, अर्थदम स अर्थक, सार्थक मतलब स अर्थक मतलब मूल्यवान है, उसका सही मतलब उपयोग किया है, किसका जीवन उपयोगी है, किसका जीवन सार्थक है, किसका जीवन सही तरह से उसने उपयोग किया है। तो कोई निर्णय नहीं कर पा रहा था, तो उधर से मार्कंडेय ऋषि आए, बड़े भक्तों की सभा थी, मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि का जो आयु है वो 7 कल्प का है, ब्रह्मा जी की 1 दिन मतलब 1 कल्प करोड़ों करोड़ों सालों का, और 7 कल्प की आयु है मार्कंडेय ऋषि, वो आए वहां से मतलब करोड़ों 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 साल के। तो सब लोगों ने बोला हां मार्कंडेय ऋषि आए हैं, इनसे पूछना पड़ेगा किसकी किसका जीवन सार्थक है। तो सब बैठे हुए थे, मार्कंडेय ऋषि आए, आते ही सब वैष्णवों ने ऋषियों ने दंडवत प्रणाम किया मार्कंडेय ऋषि को। मार्कंडेय ऋषि आके एक स्थान ग्रहण किए, सब आसन पर बैठ गए, वशिष्ठ मुनि के गोद में, जैसे हिरण्यकशिपु की गोद में प्रहलाद बैठे हुए थे, इस तरह से वशिष्ठ मुनि के गोद में उनके पुत्र पराशर मुनि बैठे हुए थे जिनका उम्र 7 साल का था। मार्कंडेय ऋषि उठकर समझ गए कि सबके हृदय में क्या प्रश्न है, बिना प्रश्न पूछे ही वो समझ गए कि इनके लोगों में प्रश्न क्या, सीधे आए और पराशर मुनि 7 साल के बच्चे जो वशिष्ठ महाराज के वशिष्ठ ऋषि के गोद पे बैठे हुए थे उनको दंडवत प्रणाम किया। तो सब आश्चर्यचकित रह गए, बोले क्या कर रहे महाराज, 7 कल्प की आयु और आप ये 7 साल के बच्चे को प्रणाम कर रहे। बोले देखो सब, उस समय मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि देखो आयु कितना उम्र है, कब तुम पैदा हुए उससे देखा नहीं जाता, भगवान सबकी आयु कैसे देखते हैं? बोलते हैं भगवान आयु कैसे देखते हैं, एक व्यक्ति की कितना समय तुमने हरि भजन में लगाया वो तुम्हारी असली आयु है, और जो हरि भजन में नहीं लगाया भगवान के भगवान को भूलकर जो संसार में आयु गंवा दिया वो सब जो है निकाल देते हो, और जितना हरि भजन में हमने लगाया भगवान के स्मरण में जो कोई भी कार्य किया है भगवान के संबंधित भगवान के आज्ञा के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया है वो हमारी असली आयु है, और जो भगवान के विस्मरण में मोहग्रस्त होकर जो काम किए हैं वो सपने के समान है, वो गिना नहीं जाता। और फिर उन्होंने कहा भले मैं 7 कल्प से जिया हूं पर अगर आप मेरी आयु गिनोगे तो शायद मैं 4 साल का हूं, पर पराशर भले वो 7 साल का बच्चा हो पर क्योंकि हमेशा भगवान का स्मरण करता रहता है हर स्थिति में, तो भले वो 7 साल का शारीरिक आयु हो पर उसका आध्यात्मिक आयु भी 7 साल का ही है, और इसीलिए वो मेरे से बड़ा है और इसीलिए मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। सब संतों को तुरंत समझ में आ गया कि किसका जीवन सार्थक है। जो भी आयु भगवान के विस्मरण में चली गई वो सपने के समान है, वो एकदम काल्पनिक है, वो गया, उसका कुछ मूल्य नहीं है। पर जो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान गीता में कहते न इह अभिक्रम, ये कोशिश भगवान के साथ संबंध जोड़ने की, नाश न इह अभिक्रम नाश अस्ति, इस कोशिश में कभी नाश नहीं होता, इसका परमानेंटली रहता है वो आयु, प्रत्यवायो कम भी नहीं होता है वो। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, भले आपकी आयु थोड़ी भी हो, पर भगवान की आंखों में वो लंबी आयु है, क्योंकि वो आयु आपने भगवान के स्मरण में, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आज्ञा के अनुसार कार्य किया। और फिर मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, भगवान जिस बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, खेत से हम लोग धान ये सब काट के लाते, धान उसको बड़े बड़े गट्ठे बांधते हैं तो ऐसा बहा पहाड़ जैसा लगता है, उसके बाद एक मशीन में उसको मारते हैं, उसको पटकते हैं, पटकने के बाद धान ये अलग हो जाता है और सारा भूसा अलग होके चला जाता है, तो इतना बड़ा जो पहाड़ जैसा था एक छोटा सा पहाड़ जैसा हो जाता है धान्य का। उसके बाद उसको पॉलिश करते, वो सब ऊपर का सब छिलका निकालते, अब बाद में बचता कितना ही, इतना ही राइस होता है, धान्य इतना आता है। तो इस तरह से उसको ऐसा एक सूप में लगाकर ऐसा सब करते तो सब उड़ जाता है और धान्य सिर्फ बचता है। तो इस तरह से मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि भगवान मृत्यु के समय एक ये लेके थोड़ा छांटते हैं ऐसा और फूंक मारते हैं, फूंक मारा तो सारा जो भूसा जैसा है ना हमारा काल्पनिक, जो अपने आप को भगवान समझकर जो भी हमने कार्य किया उड़ गया सब, और जो हमने भगवान के स्मरण में बिताया इतना सा कुछ बच जाता है। भगवान बोलते ये आर्थकम सार्थकम, इतना ही सार्थक जीवन जिया और बाकी पूरा जीवन तूने बर्बाद कर दिया, सपने में तू खो गया, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देखकर रोया, यही किस्सा पुराना है सतयुग से लेकर कलयुग, कलयुग में ज्यादा ही। तो यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मुग्धस्य बाल्ये, बालपन अवस्था में क्या बच्चों को क्या मालूम, ऐसा 10 साल चला जाता है देखते देखते, एबीसीडी सीखने से पहले ही 10 साल चला गया, दुनिया क्या है एक आए एक आए एक आए एक आए करते हुए ही 10 साल चला गया, कुछ भी समझ में नहीं आया क्या है ये। और अगर सदगुरु का आश्रय नहीं मिला तो पूरा जिंदगी भर एक आए एक आए, तो ये जिंदगी का है बस ये समझते समझते ही चले जाते हम लोग। ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, अगर ये 5 तत्व को जाने नहीं कि क्या है क्यों ऐसा हो गया क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, समझते समझते ही मर गए। तो मुग्धस्य बाल्ये, 100 साल में अगर भी जिया कोई व्यक्ति तो 10 साल तो बचपना में चला जाता है खेलकूद में। किशोरे क्रीडतो, और किशोर अवस्था में और 10 साल जो है वो खेलने में चला जाता है, अलग अलग प्रकार के वर्ल्ड कप या खेलने में या खेल देखने में, वो तो बड़े बड़े का भी चला जाता है आजकल की दुनिया में ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स। देवामृत स्वामी और राधानाथ स्वामी महाराज एक लेक्चर दे रहे थे प्रेरणा में, क्या था टाइटल उसका, हाँ अंत्य लीला ऑफ सीसी, चैतन्य चरितामृत नहीं, क्रिकेट कॉन्शियसनेस, अंत्य लीला ऑफ क्रिकेट कॉन्शियसनेस, उसमें ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स बहुत, तो ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स के ऊपर देवामृत स्वामी ने बहुत अच्छा बताया कि किस प्रकार लोगों की सरकार जो है कुछ भी कोई भी मतलब वो मूल्यवान चीज नहीं है, 10 मूर्ख लोग एक खेल रहे हैं और 2 मूर्ख लोग एक कॉर्क का एक, अब सोचो क्या एक बॉल फेंक रहा है और दूसरा एक लाठी लेके मार रहा है और 10 मूर्ख लोग बैठ के मैं पकड़ूंगा, अरे ठीक है उनको करने दो ना, पूरा दुनिया सब कुछ छोड़ के तुम मनुष्य जीवन बर्बाद करके पूरा दिन भर सामने बैठ के देखते रहते क्या मूर्ख। देखो मतलब प्रोपेगेंडा करे, एडवर्टाइजमेंट करे तो क्या भ्रमित कर सकता है माया की शक्ति। अच्छे अच्छे लोग, तथाकथित पढ़े लिखे लोग, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, महत्वपूर्ण चीजें वो भी छोड़ देते, अरे घर बार सब वो भी छोड़ देते, नहीं अभी वो फाइनल आ गया। और हर एक का अपना अपना होता है, अब यहां क्रिकेट है किसी दूसरा जगह कुछ और है, ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स। तो किशोरे क्रीडते याति विंशति, 20 वर्ष 10 वर्ष समझने में और समझने के बाद खेलकूद करने में 20 वर्ष चला जाता है, जरया ग्रस्त देहस्य याति अकल्पस्य विंशति, और 20 साल अरे उठो, कोई उठाओ मुझे, अरे कोई बैठाओ, कोई पैर उठाओ, कोई सर नीचे रखो, कोई ग्रस्त देहस्य, शरीर की देखभाल करने में ऐसे पड़े रहते बस और बड़बड़ाते रहते, और या फिर चिंता रहता है ये वो सेटल हुआ कि नहीं, मेरा पोता का पोता सेटल हुआ है कि नहीं, उसका बच्चा हुआ है कि नहीं। अरे 84 लाख यूनियन में यही करते आए, कम से कम अभी निकलो जल्दी, तैयारी करो, अभी इतने बूढ़े हो गए हो। एक व्यक्ति बता रहे थे, आंध्र प्रदेश में रहते हैं, वो भक्त बने, वो बोले उनके दादाजी अभी तक जिंदा है, वो खुद दादाजी बन गए। जो भक्त मुझसे बातचीत कर रहे थे वो अपने पोते को साथ में लाए थे, बोलते मेरे दादाजी अभी तक जिंदा है और उनको सब मालूम है कौन कौन क्या काम कर रहा है, कितना पगार कमा रहा है, कितना सेटल हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं भी जाके उनको बोलने वाला हूं कि अभी तो कम से कम थोड़ा हरि भजन करो। नहीं नहीं नहीं, चिंतित है, बोला सब सेटल हो जाने दो, इसका हो जाने दो, इसका हो जाने दो, ये भी हो जाने दो, कितना मुश्किल है। तो ये 20 साल इधर चला गया, पहले ही आधा चला गया, उसमें से 20 साल चला गया, इसमें से 20 साल चला गया, बाकी बचा कितना, 60 साल, 60 साल में आधा सोना तो 30 साल। अच्छा, बाकी 30 साल कैसे जाता है? दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य परमत्तस्या पयाति ही। जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है वह अतृप्त कामेच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन का शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में अपने ही अपने को भक्ति में नहीं लग सकता। ऐसे चला जाता है, और इस तरह से बाकी जो थोड़ा बचा वो सब सेटलमेंट करने में चला जाता है और अपना जीवन अनसेटल रह जाता है, ऐसे ही रह जाता है। 5 साल का बच्चा कह रहा है, देखिए, और फिर कहते हैं को गृहेषु उपमान असक्त आत्मनाम अजितेंद्रिय स्नेह पाशैर दृढ़ैर बद्ध मुत्सहेत विमोचितुम। बड़ा महत्व, बड़ा कठोर शब्दों में कह रहे हैं, ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपनी पत्नी बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक बंधा रहता है। और कई विस्तृत श्लोकों में सुनाए हैं कि किस प्रकार स्त्री बड़े प्रेम से बातचीत करती है और जब थका रहता है आदमी तो उसको एकदम सांत्वना देती है, बच्चे तुतलाते हैं, तुतली बोली में बातचीत करते हैं, अरे कितना अच्छा लगता है, फिर हमारा एक घर है, फिर हमारा नौकर चाकर हैं, फिर हाथी घोड़े, हाथी घोड़े आजकल कोई नहीं रखता, आज होंडा और कार, पहले घोड़े रखते थे इधर उधर जाने के लिए, अभी 2 व्हीलर है और रथ नहीं है तो 4 व्हीलर है, पूरे परिवार को ले जाने के लिए रथ। तो हाथी घोड़ी से आसक्त नहीं, पुराने जमाने हाथी घोड़े से, आजकल अपना एक्टिवा होंडा और अपना कोई फिएट बेंज जो भी है। तो ये सब को इकट्ठा करने में और इकट्ठा करने के बाद कैसा इसको छोड़ सकता हूं, इतना आरामदायक जीवन में रहने के बाद तपस्या करना, इसीलिए ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का। एक्चुअली मनुष्य योनि तपस्या के लिए, तपस्या मतलब क्या, तपस्या का मतलब जानबूझकर ठंडे पानी में नहीं, तपस्या का मतलब जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है, भले हमको अच्छा लगे नहीं लगे करो उसको, और जो भगवान की भक्ति के लिए प्रतिकूल है जितना भी उसको अच्छा लगे नहीं, ये तपस्या। तपस्या का मतलब नहीं घर छोड़ के हिमालय में जाके सर के ऊपर खड़े होके पैर ऊपर करके, नहीं, तपस्या का मतलब है ऋषभदेव कहते हैं क्या श्लोक है उसका शुरुआत, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हति, तपो दिव्यम पुत्र का, तपस्या करो हे पुत्रों, ये न सत्वम शुद्धेत, सच्चा तपस्या वो है जिससे हमारा अस्तित्व शुद्ध हो, बस मान सम्मान के लिए तपस्या करने की जरूरत नहीं, पूरा देखो मैं कितना माला करता हूं, मैं कुछ भी नहीं खाता समझे, 15 साल से निर्जल एकादशी कर रहा हूं, तपस्या कर दिखाने के लिए जरूरत नहीं है, भले देखे नहीं देखे, कोई जाने या नहीं जाने, समझे या नहीं समझे, मुझे हमको नहीं लेना देना, हम तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का उद्देश्य यह है कि तपो दिव्यम पुत्र का ये ना सत्वम शुद्धित, अस्तित्व शुद्ध हो जाए, यस्मात ब्रह्म सौख्यम, सच्चा सुख, ब्रह्म सुख। एक है शारीरिक या क्षणिक सुख, जो भगवान कहते हैं गीता में 5वें अध्याय में, कहते हैं कि यह सुख कैसा है, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख जो है पहले पहले लगता है वो बड़ा मीठा अमृत जैसा, पर बाद में वो विष जैसा हो जाता है। पर यह सुख जो है ब्रह्म सुख, आध्यात्मिक सुख, यह पहले थोड़ा कड़वा लगता है, दवाई के समान पहले कड़वा लगता है, पर इसका परिणाम अमृत जैसा मीठा होता है। तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धियत यस्मात ब्रह्म सौख्यम तू अनंतम, और ये अनंत काल तक है, ये क्षणिक सुख है। कमल दल जल जीवन तलमल, थोड़ा सुख प्राप्त किया पर हमेशा चिंतित है कब ये छीना जाएगा मेरे से, कब ये नष्ट हो जाएगा, कब कोई और इसको ले जाएगा। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज कितना सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि एक रेशम के कीड़े के समान है। रेशम का कीड़ा अपनी मुंह से रेशम निकालता है और वो बनाता 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 अपनी चारों ओर, शरीर के चारों ओर बनाता है, और जब फाइनल करता है तो पता चलता है कि मैं उसके अंदर फंस गया, पूरा जीवन वो रेशम का ये कैप्सूल बनाने में जाता है उसका, और बनाने के बाद जब लॉक करता है फाइनली, बाद में पता चलता है अरे मैं अंदर फंस गया, और बाहर नहीं निकल पाता है, और उसी में मर जाता है, सफोकेट होकर मर जाता है। इस तरह से जो व्यक्ति अपनी जीवन का परमार्थ नहीं जानता है, वो पूरा पूरा तपस्या तो करना है ही हमको, इस शरीर को मेंटेन करना है, परिवार को मेंटेन करना है, घर को मेंटेन करना है, गाड़ी को मेंटेन करना है, अपना जो मान सम्मान जो समाज में है उसको मेंटेन करना है, बहुत बड़ी तपस्या है। पर ये सब तपस्या करते 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 वही एक रेशम के कीड़े की चारों ओर जो कैप्सूल बनता है ऐसा बन जाता है, और उसमें बंद जाता है आदमी, निकल ही नहीं पाता है, कैसे मैं इसको छोड़ू, कैसे ये लोग सेटल नहीं होंगे, इनका क्या होगा, ये सब का क्या होगा, इनका क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, ऐसे करते 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 चला ही जाता है टाइम। आसक्ति इतनी हम समझते नहीं है, भले आदमी संन्यास ले ले, बाहरी रूप से संन्यास ले ले, इसीलिए कहा जाता है कि सन्यासी को अपने मूल जो स्थान है वहां नहीं जा, मूल गांव में नहीं जाना चाहिए, या अपनी पत्नी से नहीं मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक क्षण देखा तो पूरा पुराना सारी यादें इतनी भड़क जाती है कि बोलता है सब साइड में रखो, फ्लैशबैक आता है पूरा, कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, कितना अच्छा था, ये सब छोड़ के क्या कर रहा हूं मैं, छोड़ दो। कभी कभी हम लोग जाते हैं, कभी पुराने स्कूल में जाते हैं जहां हम लोगों ने खेला था कूदा था, तो जहां उस स्थान देखते हैं तो पूरा फ्लैशबैक जैसा आ जाता है, उसके साथ खेले थे वो कितना अच्छा, मेरे को आइसक्रीम खिलाता था, हम लोग इधर खेलते थे, इधर हम लोगों ने फुटबॉल खेला, इधर हम लोग ये खेला, पूरा वापस आ जाता है 84 लाख योनि में फिर से, अरे 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 वही हम लोग जाने वापस, बहुत गाढ़ा है ये, और इसको काटना, जब जीव इस भौतिक संसार में आता है, जीव मुक्त आत्मा है, पर जब ये भौतिक संसार में आता है तो माया देवी क्या करती है, एक पैकेज लाती है, खाली पैकेट शरीर का, और उसको आत्मा को अंदर डाल के एक गांठ बांध देती है, वो गांठ है ग्रंथि, हृदय ग्रंथि माहुर, वो गांठ किधर, इधर है, हृदय में, हृदय ग्रंथि माहुर। इसीलिए हम कहते हैं ओ कितना प्रिय है, अपने हृदय को पकड़ते हैं हम लोग, ओ कितना प्रिय है, सर को नहीं पकड़ते, ओ कितना प्रिय है या कितना प्रिय है घुटने को नहीं पकड़ते, वो मुझे बहुत प्रिय है कि नहीं। छाती हृदय को क्यों पकड़ते, हृदय ग्रंथि माहुर, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तद तयो मिथोर हृदय ग्रंथि माहुर अत गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो आत्मा को लेती है उसके उसकी इच्छा के अनुसार एक शरीर को लेती है और गांठ बांधती है। वो गांठ कहां है वो, और किस चीज का गांठ है वो? स्थूल शरीर हमेशा मरा हुआ है और सूक्ष्म शरीर जो आत्मा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को मार नहीं सकता, आत्मा को कुछ नहीं फर्क पड़ता। और शरीर, शरीर तो मरा हुआ है, मरे हुए आदमी को काटो जलाओ कुछ चिल्लाता है क्या हो? तो फिर तकलीफ किसको होता है महाराज? शरीर तो काटो वाटो कुछ नहीं होता, शरीर तो मरा हुआ है हमेशा, और आत्मा सच्चिदानंद है, नहीं नम छिंदंती शस्त्राणि नहीं नम, फिर तकलीफ किसको हो रहा है? ये तकलीफ जो है अहंकार से जुड़ी हुई जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार, खास करके अहंकार, अहंकार को लेके अहंकार के रस्सी से वो गांठ बांधती है। और वो अहंकार क्या कहता है? मैं ये शरीर हूं, अहम ममेति जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं। और इसको कुछ लगा, आपके शरीर को लगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता बेचारा, पर मेरे शरीर को लगा तो एक बार हॉस्पिटल में मैं गया था, हमारे एक रिश्तेदार एडमिट थे, बगल में एक व्यक्ति गुजर गया आईसीयू में, तो बगल वाले सब रो रहे, मेरे को रोना ठीक है क्या करेंगे, हॉस्पिटल में आईसीयू में आएगा तो हो भी सकता है ना 50% चांस, ऐसा भी है ऐसा भी है, वापस जा भी सकता है, खत्म भी हो सकता है। पर इधर वाले गुजर गए तो मेरा शून्यायतम जगत सर्वम, क्यों? क्योंकि ये मेरा ही हृदय का विस्तृत स्वरूप है, और वो अगर थोड़ा भी कटा लगता है। कि श्यामानंद प्रभु ने बताया, कोई इतना गाड़ी खड़ा है, किसी गाड़ी ने टंकी में आग लगा दी, करते आजकल में कोल्हापुर लोग गुंडे लोग ऐसे, पर आपकी गाड़ी में आग लगाए तो आपके हृदय में आग लग जाएगा बैठे बैठे इधर। तो बोल सकता है नहीं महाराज वो तो शरीर है, वो तो गाड़ी है, आप तो गाड़ी नहीं हो, गाड़ी पर मेरा गाड़ी हो, कितना परिश्रम करके मैंने उसको खरीदा है और वो जला दिया उसने, हृदय जल उठता है हमारा, ये कनेक्शन है। तो ग्रंथि बांध के माया देवी रखती है, और उसको आप खोलने की कोशिश मत करो, ब्रह्म गांठ ऐसा बांधा है ना उसको, हम खोल ही नहीं सकते उसको। एक ही तरीका है, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशय, तलवार लेके एक काट देना उसको। कौन सा तलवार? श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति सहृद सताम। एक्चुअली हमें नहीं मालूम, जब हम भगवान के बारे में, भगवान की लीला, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं के बारे में श्रवण करते, चुप और कुछ मत करो आप, सिर्फ भगवान के नाम रूप गुण और लीला को श्रवण करो, कानों से ये हृदय में जाता है, और ये हृदय में जाके ये ऐसा तलवार रूपी है, ये कृष्ण कथा जो है ऐसा तलवार है जो उस ग्रंथि को काटता है, धीरे धीरे काट देता है। जो भी भागवत, नित्यम भागवत सेवया, हर रोज अगर भागवत का आप अध्ययन करो, भागवत का सेवन करो या भागवत का श्रवण करो, जब भी यही समस्या आप भक्ति में आने से पहले की स्थिति देखो, आज की स्थिति देखो, वही समस्या आए, उतना दर्दनाक नहीं होता, उतना विचलित नहीं होते, उतना तकलीफ नहीं होता जितना पहले होता था, क्योंकि हम समझते हैं सब भगवान ने दिया है, जब चाहे ले सकते हैं, उनका है। जब तक था हम अच्छी तरह से उसका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, उसके बाद ले गए तो ठीक है प्रभु जैसे आपकी इच्छा, हम क्या कर सकते हैं। वो अगर छीनना चाहे मृत्यु सर्वहरस चाहम, क्या हम कर सकते हैं, और वो देना चाहे तो ठीक है। तो इस तरह से दैट इज द पावर ऑफ कृष्ण कथा। कृष्ण कथा की शक्ति वो है कि ये ग्रंथि नहीं जाएगी अपने आप से, ये मोह जो है जनस्य मोहो यम अहम ममेति बहुत समय से, और उसको एक ही तरीका है श्रृण्वताम सुकथा भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशय। और ये ग्रंथि के कारण क्या है, संशय होता है कैसा करूं, कल क्या होगा, कल मेरा कौन आश्रय देगा, कल ऐसा कैसा, मानो यही सब तुम ही ने जो अरेंज किया उसी से तुम बच रहे हो। अरे क्या मालूम पंखा सर पे अभी गिर गया तो मर गया आदमी, क्या तुम पकड़ के रखे हो पंखे को। यही मोह है। मोह का मतलब है कि हम समझते हैं कि हम ही हमारे शुभ चिंतक हैं, और ये हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, और ये हमारे समाज है, ये हमारा देश है, ये हमारा देखभाल कर रहा है, इनकी संरक्षण से मैं चल रहा हूं। आप देखिए हिरण्यकशिपु उसने क्या क्या इंतजाम किया अपने संरक्षण के लिए, प्रहलाद महाराज ने क्या संरक्षण के लिए अपना इंतजाम किया, हरिचरणम, बस उनको विश्वास था मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे। हाँ हमारी योजना के अनुसार नहीं रखने वाले, प्रभु आप सचमुच में है ना तो मेरे को एक बंगला में रहना चाहिए, हर रोज 56 भोग मिलना चाहिए सुबह शाम, तब मैं समझूंगा आप हो। वाह आप क्या योग्य हो उसके, हमारी योजना के अनुसार भगवान आप हमारे नौकर नहीं है वो, पर 100% योगक्षेमम वहाम्यहम, हम हमारे लिए जो जरूरी है जितना जरूरी है वो देंगे ही, इतना विश्वास हमको होना चाहिए। और इस तरह से अलग अलग तरीके से आसक्ति का वर्णन करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये सब से अगर निकलना है तो बहुत सुंदर से बोलते किस प्रकार से, तस्मात सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम भावमासुरम उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजः। अतएव हे असुर से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, बड़ा सुंदर है, अतएव हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि ऐसे भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं तुम पर प्रसन्न हो, ऐसा कार्य करो कि भगवान आप पर प्रसन्न हो जाए, बस अंततः सारा जो कार्य हम कर रहे हैं ना इसका एक ही उद्देश्य है भगवान प्रसन्न हो जाए, तृप्त भगवान प्रसन्न हो जाए। क्या है वो श्लोक कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं वर्णाश्रम में अंततः भगवान की प्रसन्नता के लिए, धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमये वै केवलम, नहीं तुष्यति वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेन पर पुमान विष्णुर आराध्यते पमता नान्यत तत्तोष कारण तोष उनका संतोष उनको तृप्त करना, इसीलिए हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। और फिर कहते हैं तुम अपनी आसुरी प्रकृति छोड़ दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो, सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान आप कोई कहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भगवान के प्रति प्रेम हो गया, तो ये तीन चीज होना चाहिए, चार चीज होनी चाहिए। भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका लक्षण क्या है, भगवान की शरणागत होना, भगवान की सेवा करना नवदा भक्ति के द्वारा, और भगवान से प्रेम करते हो तो भक्तों से मैत्री। आप अगर भगवान को प्रेम करते हो और भक्तों से मैत्री नहीं कर रहे हो और भक्तों को चोट पहुंचाते हो तो फिर कैसे भक्ति है। अगर एक पत्नी पति को कहती है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, पर आपके मां बाप है ना ये बुढ़े, इनको हटाओ यहां से, और आपके ये भाई बहन सब हटाओ यहां से, मेरे को कुछ लेना देना नहीं उनसे, सिर्फ आपसे प्रेम करती हूं। वो बोलता है अरे मेरे को वो प्रिय है, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझको जो प्रिय है उनसे भी तो प्रेम करो, नहीं तो ये स्वार्थी है, स्वार्थ प्रेम है। क्यों तुमसे? क्योंकि तुम मुझे हर रोज हर महीने लाके देते हो, अगर देना बंद किया किसी और को ढूंढूंगी मैं बस। प्रभु जब तक दे गए ठीक है, नहीं तो बगल में और एक मंदिर है वहां जाने वाला हूं मैं। बिजनेस जैसा। तो भगवान को, भगवान के प्रति प्रेम है तो वो प्रेम चार प्रकार से प्रदर्शन होना चाहिए। भगवान के संबंध में शरणागति और सेवा, और भगवान को भक्त बहुत प्रिय है। साधवो हृदयो मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्य न जानाती ना हम तेभ्यो। भगवान अपने हृदय में साधुओं को रखते हैं, और भगवान के हृदय को प्रसन्न करना है तो साधुओं से मैत्री करो, भक्तों से मैत्री करो। भगवान को प्रसन्न करोगे और भक्तों का हृदय दुखाओगे तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो भक्तों से मैत्री, ये प्रेम का लक्षण है। और तीसरा, भगवान का इस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिजनेस क्या है? कि सब बद्ध जीवों को वापस उनके धाम में आमंत्रित करने के लिए। तो इसीलिए हमारा काम यही है, अगर हम प्रेम करते भगवान से तो भगवान का उद्देश्य, भगवान का बिजनेस हमारा बिजनेस। भगवान का बिजनेस क्या है? सब बद्ध जीव कैसे वापस भगवत धाम आए, बैक टू गॉड हेड। तो हमारा भी यही बिजनेस होना चाहिए कि किस प्रकार बद्ध जीव जो नादान है, जो भगवान को नहीं जानते, उनको ऐसा संदेश दे जिसके द्वारा वो भी जाने कि भगवत धाम क्या है। जाओ देवाचा गाओ। यह अच्छा है, प्रहलाद महाराज के नरसिंह देव प्रिय इष्ट देव नरसिंह चतुर्दशी से हम लोग ये मैराथन शुरू कर रहे, बहुत सुंदर है। दया कुरुत सौहृदम तस्मात सर्वेशु भूतेषु दया कुरुत सौहृदम। सहृदम भगवान हमारे सुहृद हैं, सबके सुहृद हैं, याद दिलाओ उनको, अरे तुम्हारे सुहृद राह देख रहे हैं, कृपया आप जाओ बैक टू गॉड हेड। तो सबसे बड़ा भगवान को प्रसन्न करने वाला तरीका यह है कि हम थोड़ा बहुत जो ज्ञान प्राप्त किए हैं दूसरों को दे किसी तरह से। तो भगवान के प्रति शरणागति और सेवा, भक्तों के प्रति मैत्री, नादान जीवों के प्रति दया यानी प्रचार, और जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, हम उनसे द्वेष तो नहीं करते क्योंकि भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, तो फिर क्या करेंगे? दूर से प्रणाम, भगवान सब ठीक है, ठीक है भाई, हरे कृष्ण, जो वो करना है करो, और बाई चांस तुमको कुछ तकलीफ आए ना, ये हमारा एड्रेस, उस समय आ जाना। अभी ठीक है तुम ही भगवान हो ना, ठीक है, पर जब तुमको समझ में आ जाएगा एक दिन तुम भगवान नहीं हो, इधर आ जाना, हम आपके परम पिता से जुड़वा देंगे। तो दूर से प्रणाम उनको बस। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यम, कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना चाहिए, भले हम महाभागवत नहीं हो। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज ने बड़े सुंदर से इन छठे अध्याय में यह बतलाया कि मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है, क्यों ये दुर्लभ है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, जीवन के लक्ष्य को नहीं जानता, उसकी आयु कैसे चली जाती है, और जानने के बावजूद भी कौन सी ऐसी आसक्ति है जो उसको बांध के रखती है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में बाधा देती है, कौन सा गांठ है जो लंगर जैसे बंध जाता है और छुड़ाता समुद्र के उस पार जाने में, नाव को उस पार ले जाने में बाधा करता है, और उसको निकालने का तरीका क्या है? कि भगवान के प्रति शरणागति और सेवा, भक्तों के प्रति मैत्री, और आम जीवों के प्रति दया, और जो बहुत ही निंदक हैं और नास्तिक हैं, अगर खास करके निंदक, नास्तिक है तो ठीक है आस्तिक बनाया जा सकता है, पर निंदक है जानबूझ के निंदा करते, उपेक्षा। इस तरह से धीरे धीरे प्रगति करके हम भी भगवान की शरण जा सकते हैं। जय श्री प्रहलाद महाराज की, श्री नृसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। निथाय गौर प्रेमानंद से प्रश्न पूछते हैं बच्चे लोग, अरे तुम तो हमारे साथ ही यहीं तो जन्म लिए कयादु के गर्भ से, कहां से सीखा ये सब तुमने? तो बोलते नारद मुनि से सीखा, और नारद के परंपरा में जो भी आएगा वो समझ जाएगा ये। तो बोले कब सीखे पर, कब सुने? और वो अगला अध्याय कि मां के गर्भ मैंने क्या क्या सुना, उस सातवें अध्याय में वर्णन होगा। शायद अगले साल नरसिंह चतुर्दशी में चर्चा करेंगे इसके बारे में। हरे कृष्ण। प्रकार भागवतम और ये खास हिरण्यकशिपु और ये प्रहलाद महाराज की लीला, ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये परम सत्य है। आज के लिए भी ये सत्य है और अपने हृदय के अंदर भी ये एक सत्य है। इसकी चर्चा हम दोपहर को करेंगे। अभी प्रसाद के लिए जा रहे हैं उधर। कुछ अनाउंसमेंट है?